سلام على عباده الذين اصطفى. شیخ اور مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے سوال کیا کہ میں اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے؟ شیخ اور میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اپنی روحانیت کو بڑھانے کا وہی طریقہ ہے جو جہاز اڑانے کا طریقہ ہے. آؤ ذرا آؤ، بیٹھو. مرشد نے فرمایا کہ روحانیت کو بڑھانے کا وہی طریقہ ہے جو جہاز اڑانے کا طریقہ ہے. اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ روحانیت کی کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش ہو جائے، کیونکہ ایک صاحب یہاں پر بھی آئے اور اسی قسم کا سوال اس فقیر سے بھی کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری روحانیت بڑھ جائے. تو مجھ کو کچھ اندازہ ہوا کہ جناب جو ہے، جو سائل ہے یعنی سوال کرنے والا، وہ روحانیت سے بے خبر ہے. تو پوچھا کہ میں نے پوچھا کہ بھائی، یہاں باہر چہل قدمی کر رہا تھا میں اسی مسجد میں، تب میرے ساتھ یعنی واک اینڈ ٹاک چل بھی رہے تھے اور کچھ گفتگو بھی جاری تھی. تو ان کے سوال پر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی، آپ روحانیت کی کیا معنی سمجھتے ہیں، کہ روحانیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا روحانیت مثلا یہ ہے کہ ہوا میں اڑنے لگ جائیں اور پانی پر تیریں. تو یہاں پر ایک مکسچر مشین کھڑی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے نا یہاں پر. تو کہنے لگے ایسا ہو کہ روحانیت کی اس کو اٹھا لیں اور زمین میں گھس جائیں. کہا یہ تو ہوا میں اڑنا، تو اپنے شیخ کی بات نقل کی کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ ہوا میں اڑنا تو مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے، پر پانی پہ چلنا یہ تو تنکا بھی تیرتا ہے پانی پر، زمین میں چھچھوندر بھی گھس جاتی ہے، اور رہی وزن اٹھانا تو یہ تو گدھوں کا کام ہے، کمالات میں سے نہیں ہے نا جی، یہ تو کمالات میں سے نہیں ہے کہ جی اتنا وزن اٹھا لیا. انہوں نے کہا اس کا نام تو روحانیت نہیں، یہ تو جسم کی ایک چیز ہے اور یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لہذا پہلوان طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں، عقل میں کم ہوتے ہیں، بتانا نہیں کسی پہلوان کو. عقل میں کمی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے مرشد فرماتے کہ جو ان کا استاد پہلوان ہوتا ہے نا، وہ گدی پہ مارتا ہے زیادہ تر. لہذا گزر پہلوان شاگرد بیٹھا ہے، استاد گزرے گا، گدی پر ایک ہاتھ جڑ دیا، نتیجے میں گدی پر مار کھاتے کھاتے عقل میں فتور آتا ہے. اس لیے جن کو زیادہ طاقت ہوتی ہے، ایک قاعدہ ہے، ولل अक्सर हुक्म, अक्सर हालत यह है कि जिनमें ताकत ज्यादा होती है तो अकल कम होती है। तो उन्होंने वो पहलवान, ये पहलवानी कोई कमाल नहीं है क्योंकि अकल में तो कमी आ जाती। तो अब वो हंसे जब ये बात बोली कि ये वजन ये तो गधा भी उठा सकता, तो ये तो कमालात में से नहीं है। हंसे और कहने लगे कि अच्छा भाई फिर रूहानियत होती क्या है। मैंने कहा हाँ, अब ये भी तो पूछो, पहला तो सवाल ये है कि रूहानियत है क्या। तो असल में रूहानियत चूंकि रूह आई है आलम बाला से, तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि रूहानियत रूह के और अल्लाह के दरमियान उस रिश्ते का नाम है कि तुम हमारे हम तुम्हारे हो चुके, तुम हमारे हम तुम्हारे हो चुके, दोनों जानिब से इशारे हो चुके। यानी वो रूह चैन पाती ना हो उसके गैर से, जो रूह चैन पाती ना हो उसके गैर से, वहशत से भागी फिरती हो हर एक दैर से। दैर कहते हैं मंदिर को, यानी वो रूह ऐसी हो कि अल्लाह के सिवा उसको किसी से चैन और करार और इत्मीनान और सुकून न मिले, और जहां अल्लाह ना हो ऐसी जगह पर उसको वहशत हो कि मान लो दावत वलीमा है, सुन्नत है, और सुन्नत से अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है, और सुन्नत जरिया तकर्रुब है मेरे दोस्तों, सुन्नत से अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है और सुन्नत जरिया तकर्रुब है, यानी इसके जरिए से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, ये सुन्नत है। और अब दावत वलीमा सुन्नत है, इससे अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है, लेकिन वही दावत वलीमा जो रातों को 11 11 12 12 एक एक बजे हो और आठ आठ किस्म के खाने हो, कई कई किस्म के मीठे हो, और टेबल कुर्सी पर हो खाना, फिर मुई भी हो वहां पर, और फिर खानदान के सारे अंकल और चाचे मामे इस इंतजार में बैठे हैं कि मौका मिले तो हम लेडीज कंपार्टमेंट में घुस जाएं। क्या कंपार्टमेंट मजा है ना, लेडीज कंपार्टमेंट में घुस जाए, और फोटोकशी फोटोग्राफी और मुई, मेरे मुर्शिद ने इसका नाम मुई रखा है, जैसे औरतें कोसती है ना कमबख्त मारी मुई, वो जो मूवी मिक्स गैदरिंग, तो दावत सुन्नत दावत वलीमा तो सुन्नत है, और वो इसीलिए चला गया। और फिर हॉल की खुराफात और खराबियों में से यह है कि वहां पर इसराफ होता है, नंबर एक इसराफ होगा वो उस इसराफ में एक इसराफ तो वो बिजली का इसराफ है कि छोटी 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 बत्तियां और जरूरत से जायद बिजली, एक ये इसराफ है। और फिर हॉल अगर इस मकसद के लिए हो कि जी असल में हमारे पास जरा जगह नहीं है, हमारा खानदान और बिरादरी का काम ही पॉपुलेशन बढ़ाना है, आबादी बढ़ाना है, इसलिए हमारा जरा खानदान बड़ा है, तो इस हमारे घर के खानदान में वो खानदान आएगा नहीं, तो इसलिए किसी हॉल में करें, तो उस हॉल के अंदर फिर हम इंतखाब करते हैं जरा हमारे स्टेटस के मुताबिक हॉल होना चाहिए। तो पता ही चला कि हॉल करने का मकसद वो अपनी सहूलत नहीं है, बल्कि उससे मकसद है जरा हमारा स्टेटस पता चले कि हैसियत हमारी माली हैसियत का लोगों को इल्म हो। फिर वहां टेबल कुर्सी पर खाना, जब ऐसा स्टेटस वाला हॉल लेंगे तो जमीन पर बैठकर तो खाना नहीं होगा जरा, क्योंकि जब स्टेटस वाला हॉल लेंगे तो स्टेटस वाले लोग आएंगे, और स्टेटस वाले लोग सलवार कमीज नहीं बल्कि पतलून पहनते हैं, और जब वो पतलून पहने तो उनको नीचे बिठाना इसलिए मुश्किल है कि जैसे ही वो नीचे बैठने का इरादा करके हरकत करते हैं तो चिरर की एक आवाज आती है। शरीयत में क्या, सुभान अल्लाह, हमारे अकाबरीन, हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने, अल्लाह वालों ने जो लिबास सिखाया उस लिबास पे किए कि कुर्ता जरा लंबा हो। बाजे लोगों को लखनवी पजामा पहनने का शौक होता है जो तंग होता है और कुर्ता छोटा, सजदे में जाते हैं तो घंटा घर नजर आता है। इसलिए शरीयत, अल्लाहु अकबर, क्या प्यारा मेरे मुर्शिद ने सिखाया कि भाई तुम कुर्ते को जरा घुटने से नीचे तक पहनो ताकि सजदे में भी जाए तो आजाए मस्तूरा मकशूफा ना हो, वो मस्तूरा ही रहे, छुपे रहे। सुभान अल्लाह, फरमाया कि इसमें इज्जत और वकार है। इसलिए एक मौलवी साहब से किसी ने पूछा, हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि तुमने जब वाकया बयान किया ये बात, एक मौलवी साहब से किसी ने पूछा कि मैं पतलून में नमाज पढ़ता हूं, क्या मेरी नमाज हो जाएगी? तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई तुम्हारी तो हो जाएगी, तुम्हारे पीछे वालों की नहीं होगी। कहने लगे कि अब जब मैं दफ्तर वाले मिल मालिक है वो, और कहने लगे कि अब मैं भी पैंट पतलून पहनता था, ये वाकया सुना तो अब पहन कर चला गया आदत, अब जब नमाजी है माशाल्लाह, कहा जब नमाज पढ़ने की नमाज पढ़ी सजदे में गया तो बस सारे सजदे में यही बस होता कि हाय खैर नहीं है पीछे की। कहते बस उस दिन के बाद से मैंने फौरन छोड़ दिया। इज्जत का लिबास, इसलिए हजरत मौलाना मजहर साहब दाम बरकातुल आलिया, मेरे शेख के मुर्शिद, मेरे मुर्शिद के साहबजादे, इस मस्जिद की तामीर और बानी वही है, हजरत ही के इंतजाम में ये मस्जिद है, मुझे खिदमत के लिए मुकर्रर फरमा दिया और इस सोसाइटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ताल्लुक है कि सरजमीन पर है बस, बाकी इंतजामन कोई ताल्लुक नहीं है। अरे मदर साहब दाम बरकात नेपाल तशरीफ ले गए थे। अरे रशीद साहब क्या बताएं कि आपके सर झुकाने से हमारे दिल पर क्या असर हो रहा है, कि कभी उठाएं कभी झुकाएं, ऐसा करें। फलाना मदर साहब दाम बरकात नेपाल तशरीफ ले गए, वहां एक बड़ा अफसर था, उस अफसर ने सवाल किया कि ये तुम मुसलमान लोग कुर्ता शलवार पहनते हो, ये क्या फर्क है इसमें? और आगे आ जाए उमर भाई, इधर आ जाए, इधर आ जाए, यहां से उमर, उमर के पास बैठ जाए, ये दो उमर हो गए। तब उन्होंने कहा कि कुर्ता शलवार ये तुम मुसलमान क्यों पहनते हो? मौलाना ने फरमाया कि उसकी वजह यह है कि ये इज्जत का लिबास है। उसने कहा वो कैसे? फरमाया वो ऐसे कि अगर आपके यहां मान लीजिए एक हिंदू है या सिख है, उसने कुर्ता शलवार पहना है और रोड एक्सीडेंट में उसका वो मर गया, रोड एक्सीडेंट में हलाक हुआ, वो मर गया, अब वो कुर्ता शलवार पहने हुए, आपको नहीं पता ये मुसलमान है या हिंदू है सिख है, क्योंकि आपके मुल्क में सब ये तीनों मौजूद होते हैं, तो आप बताइए उसकी लाश को किसके हवाले करेंगे? उन्होंने कहा कि हम उसकी लाश मुसलमानों को देंगे, शलवार वाले को। अफसर ने कहा हम उसकी लाश मुसलमानों को देंगे। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि यही इज्जत का लिबास है, पतलून में होगा तो आप उसकी पतलून खोलकर देखेंगे कि ये मुसलमान है कि ये कौन है, लेकिन ये लिबास बताता है कि ये मुसलमानों का लिबास है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सजदे में कुर्ता, लंबा कुर्ते का यही फायदा है, लंबे कुर्ते का यही फायदा है कि इंसान सजदे में रुकू में जाता है तो उसके आजा खूब मस्तूर छुप जाते हैं अच्छी तरीके से, ये इसका फायदा है। तो दावत वलीमा सुन्नत है, लेकिन जो खराबियां के हॉल लेना स्टेटस का, फिर उस पर टेबल कुर्सी, फिर उसे लाइटिंग हजारों लाख हजारों हजारों रुपए की, फिर कई किस्म के खाने भी चाहिए। अगर सिर्फ बिरयानी और जर्दा कर लिया तो साहब हमारी तो नाक कट जाएगी कि देखो ये तो गरीबों का वलीमा है। नतीजे क्या होगा मेरे दोस्तों? ये दावत वलीमा कहने को सुन्नत समझ कर गए, लेकिन वहां गए तो खिलाफ का सुन्नत, फिर मिक्स गैदरिंग। बहुत ये क्या, तो एक तंबू 4 फीट का लगा दिया और फिर उस बॉर्डर के किनारे जी तबादला भी हो रहा है। वो जो तंबू लगाए बीच में कन्नात, वह फौजी तबादले भी हो रहे हैं, मुजाकरात भी जारी है, इधर से भाई साहब उधर से भाभी साहिबा। ये जो वो दावत वलीमा सुन्नत समझ कर गए, लेकिन वहां नतीजा क्या हुआ? वहां बजाय सुन्नत के खिलाफ सुन्नत है। बस यही है, अब वहां पर अब हमारी रूह को दिल को चैन इत्मीनान न मिलना, ये अलामत है कि हमारी रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है। इसी को रूहानियत बोलते हैं कि अल्लाह ताला की नाफरमानी और खिलाफ सुन्नत पर राजी न होना, यही रिश्ता रूहानियत का रिश्ता कहलाता है। अभी फकीर का सफर था पिछले हफ्ते में, पंजाब के एक इलाके में जाना हुआ। हमारे एक दोस्त मुफ्ती साहब है, तो वो मुफ्ती साहब अब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल देखा, तो वहां शामियाना उनके घर के बाहर लगा हुआ था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे खानदान बिरादरी गांव की शादी है तो यहां पर तुम निकाह पढ़ा दो। कहा कि निकाह होना था लेकिन मैं लोगों को बताया कि एक पीर साहब आ रहे, पीर साहब और शाह साहब, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भाई बताओ निकाह शामियाने में होगा या मस्जिद में होगा। कहने लगे कि वो तो शामियाने में होगा। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बात यह है कि शामियाने में निकाह हो तो जाएगा, लेकिन बात यह है कि मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने निकाहों को मस्जिद में करो, जालूहू फिल मसाजिद, निकाह को मस्जिद में करो और ऐलान करो, इसलिए जम में गफीर हो, बड़ी तादाद हो, के निकाह के गवाह ज्यादा हो। निकाह को मस्जिद में करना ये सुन्नत है। तो उनसे मैंने कहा कि आगे आके बैठ जाओ, आ जाओ आगे, देर लगाओगे तो कैसे बेवकूफों का काम चलेगा, जल्दी से आके बैठ जाओ, इधर उधर। निकाह मस्जिद में करना ये सुन्नत है। कहने लगे कि मैंने पूछा शामियाने में होगा या मस्जिद में होगा। कहने लगे कि जनाब वो तो शामियाने में होगा। मैंने कहा भाई निकाह मस्जिद में सुन्नत है और मैं तो मस्जिद में निकाह पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ये देहाती लोग हैं, ये तो मानते नहीं है। मैंने कहा ठीक है ना माने, मुझे भी जरूरत नहीं है, फिर वो इस पर राजी नहीं है तो हमें भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा आप जाकर पढ़ा दीजिए। सफर से आया था, कुछ थकावट के असरात थे। मैंने कहा अच्छा आप तो पढ़ाए, हम तो आराम करेंगे। अभी मैं लेटा ही था कि वो दोबारा आ गए मौली साहब हमारे दोस्त। कहने लगे कि भाई वो तो कह रहे हैं कि नहीं हमने निकाह तो शाह साहब से ही पढ़वाना, पीर साहब से पढ़वाना। ये बताने का मकसद देखो शेख का फैज होता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मस्जिद में? कह रहे हाँ मस्जिद में। कह सब वो तैयार है जाने को। मैंने कहा चलो, उसी वक्त खड़ा हो गया, चलो भाई चलो, अब आराम को छोड़ो, अब काम का वक्त आया, जहां काम हो वह आराम की जरूरत नहीं। अब उसके बाद मस्जिद पहुंचे तो नमाज में तकरीबन आधा घंटा था। अब जनाब सब लोगों ने वजू वगैरह किया, दूल्हा ने भी अपने शेरवानी उतारी, कुल्ला वगैरह, पंजाब का दूल्हा, सोचे क्या उसका खास स्टाइल होता है। उसने शेरवानी उतारी, सबने वजू किया, वजू करते करते वक्त लगा, इतने में अजान भी हो गई थी, मैंने सुन्नतें शुरू कर दी, सुन्नतें की, वक्त कम था, साथी से कहा कि भाई फॉर्म वॉर्म तैयार रखो, जो लिखने की चीज, ताकि फौरन नमाज के बाद फौरन निकाह हो जाए। अब माशाल्लाह वो बराती निकाह वाले वो सब मस्जिद में आए, नमाज अदा की, नमाज कर दो सुन्नत खत्म करके मैं मेंबर पर बैठ गया। हमारे मौल साहब ने कहा कि कुछ बात भी सुना दो, मैंने कहा अच्छा। मैंने उनसे कहा कि मैं ज्यादा बयान नहीं करूंगा, मुख्तसर करूंगा। और वाकई अब वो दूल्हा ऐसे ही आ गया। जब दूल्हा ऐसे ही आया तो मैंने उसको कहा अजीब आदमी हो, जाओ मियां जरा कुछ पहन वहन के आओ, अपना दूल्हा बन के दिखाओ उसकी तारीफ के लिए। अब वो अपना शेरवानी पहन कर आया, चाया, फिर एक बात तो जो पेश की, नंबर एक बात ये पेश की कि देखो एक सुन्नत को जिंदा करना जबकि सुन्नतों को छोड़ा जा रहा हो, 100 शहीद का सवाब मिलता है। लदा आज आपका निकाह ये मस्जिद में हो रहा है, लदा एक सुन्नत, अब जबकि निकाह मस्जिद में नहीं, 100 शहीद का सवाब हम सबको मिलेगा। तो काम दूसरा काम ये कि हर आदमी ये चाहता है, हर बाप चाहता है, हर भाई चाहता है कि मेरी बेटी मेरी बहन को उसका शौहर आराम से रखे, पिटाई ना करे। लगा जो हमारे घर में है वो भी किसी की बीवी है, उसकी भी पिटाई ना करे कि सर बाल पकड़ा हाथों में और उठा के सर दे मारा। और फिर शुरू शुरू में तो ये कैसा है कि उसकी खातिर जमात की नमाजें भी छोड़ी जा रही है। जब वक्त गुजरा अब जनाब पिटाइयां शुरू। दूसरी बात ये काम ना करें। और तीसरी बात अपनी बेटियों को अपनी बहनों को भी सिखाओ कि शौहर की फर्माबरदारी को अपनी नजात का जरिया समझे। अगर कभी वो कुछ कहे तो उसको बर्दाश्त करें, जरा जरा सी बात पर रूठ कर लड़ कर घर में जा बैठना, माँ बाप को उठाकर फोन कर दिया, अब वो जो बात दबने की थी और उभर गई। माँ और भाई कह रहे हाँ फिक्र न कर, ये और वो हम छोड़ेंगे नहीं, आ जा। भाइयों के आसरे पे औरतों ने तलाक ले ली, चली गई। चंद दिनों में भाभियों को वो जो नंद है मिसले गंद लगने लगी। अब वो पछताने लगी कि काश वो जैसा भी था इससे तो अच्छा था, अगर कुछ कहता भी था, लेकिन शौहर तो शौहर होता। चौथी बात ये पेश की कि देखिए जनाब, अब आप जो ये मिसाल हो गई निकाह मस्जिद में, अब आप लोग हमेशा अपना निकाह मस्जिद में करें। अपनी बेटी हो, अपनी बहन हो, अपना भाई हो, अपना बेटा, निकाह को मस्जिद में करें। उसके बाद मुख्तसर 5 मिनट का भी बयान नहीं था, तकरीबन 4 से 5 मिनट का बयान। फिर उसके बाद निकाह पढ़ाया, मैंने कहा लाओ मियां छुहारे निकालो, छुहारे दिए, फिर दूल्हा को कुछ इनाम भी दे दिया, तोहफा दे दिया, खुश हो जाए। तब अल्लाह ताला के इस बात पर शुक्र अदा किया कि देखो एक निकाह, एक सुन्नत जिंदा हुई, एक सुन्नत जिंदा हुई, फिर तमाम बरातियों ने नमाज भी पढ़ी। वो जो हमारे मेजबान वो कहने लगे सच सच, मैंने कहा देखो पढ़ी, कहा वाकई सच बताता हूं कि शायद मैं भी ना पढ़ता। उन्होंने खुद इकरार किया इस बात का। रूहानियत यह है कि अल्लाह ताला से हमारे कल्बो जान का वो ताल्लुक कि हम अपने दिल को तोड़ दें लेकिन अल्लाह के कानून को ना तोड़े और अल्लाह ताला की नाफरमानी से हमें चैन ना मिले, ये ताल्लुक रूहानियत का ताल्लुक कहलाता है। इस ताल्लुक को निस्बत भी बोलते हैं। निस्बत क्या है? निस्बत इसी का नाम है, निस्बत इसी का नाम, निस्बत इसी का नाम है, निस्बत इसी का नाम। उनकी गली से आप निकलने ना पाइए। हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया कि निस्बत क्या है, कहते जी नहीं साहिब निस्बत है ये निस्बत वाले। तो निस्बत क्या है कि निस्बत इसी का नाम है, निस्बत इसी का नाम, उनकी गली से आप निकलने ना पाइए। तो अल्लाह शरीयत और सुन्नत के जरिए से अल्लाह ताला से जो हमारे कल्बो जान का ताल्लुक है
इस ताल्लुक को मेरे दोस्तों रूहानियत से ताबीर किया जाता है। ये रूहानियत है। तो मेरे मुर्शिद से सवाल किया कि हजरत मैं चाहता हूं कि मेरी रूहानियत में तरक्की हो जाए, इसका क्या तरीका है? मेरे शेख, मेरे पीर मुर्शिद आरिफ बिल्ला हजरत अंदस हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अफ्तर साहब दानपुर कादम ने फरमाया इसका तरीका वही है जो जहाज उड़ाने का तरीका है। वो कैसे? फरमाया कि जहाज के लिए तीन काम है। नंबर एक काम ये कि जहाज पर पायलट चाहिए, पायलट जिंदा होना चाहिए। तो पायलट जिंदा हो, देखो भाई बात सुनो, इनको बुलाओ, आप लोग यहां बातें ना करें, अगर जरूरी बात है तो बाहर चले जाएं, लेकिन यहां बैठे तो खामोशी से बैठे, उनमें खलल वाकई होता है। ये दीनी मजलिस है, अगर जरूरी बात हो तो आप बाहर जाके कर लीजिए। पहली बात तो ये कि पायलट जिंदा हो, राशिद मिनहास जो हमारी किताबों में हम जिनका जिक्र पढ़ते हैं, निशाने हैदर लेने वाले राशिद मिनहास, अगर वो पायलट अब मान लो इंतकाल हो गया, शहीद हो गया इंडिया के साथ जंग में, तो अब वो जो है कहे कि जी साहब पायलट कहा है? जी पायलट तो नहीं है। कहां गया? वो जी अपनी कब्र से फैज पहुंचा रहे हैं। कब्र से फैज पहुंचाने वाला नहीं, जिंदा पायलट चाहिए। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि अगर तुम बीमार हो गए हो, क्या ऐलान करेगी? नहीं जी, वो डॉक्टर जुम्मा था, वो बहुत अच्छा डॉक्टर, या हकीम अजमल खान, हकीम सईद, वो बड़े अच्छे हकीम, हम तो उनसे इलाज कराएंगे। अब किसी से इलाज ही नहीं करवा रहे, समझाएंगे कि भाई ये क्या करते हो, जिंदा डॉक्टर, बल्कि वो खुद ही ऐसी बेवकूफी का काम तो वो भी नहीं करेगा। बल्कि मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि अगर किसी मोहल्ले इलाके के अंदर अगर कोई डॉक्टर नहीं होगा तो चिकाएगा, चलो यार कंपाउंडर से ही दवा ले लो, कुछ इंजेक्शन लगा के काबिल तो कर देगा कि डॉक्टर के पास पहुंच जाए। दादा वो कंपाउंडर से ही दवा ले लेता है। तो एक तो चीज ये रूहानियत के लिए कि पायलट चाहिए, यानी शेख और मुरब्बी मुर्शिद चाहिए जो हमारी रूह के जहाज को उड़ाकर जिस्म को अपना सा करके ले चली अफलाक पर, जिस्म को अपना सा करके ले चली अफलाक पर, अल्लाह अल्लाह ये कमाल रूहे जौला देखिए, जो हमारी रूह को जो राहे गुम करदा है, क्या है राहे गुम करदा, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत के रास्ते से पिछड़ी हुई और हटी हुई है, रास्ता गुम कर दिया, उस रूह को अल्लाह ताला की मोहब्बत के रास्ते पर ले जाना और अल्लाह ताला से जोड़ने वाला, ये शेख चाहिए और मुरब्बी चाहिए। लेकिन उसकी खसूसियत क्या कि वो जिंदा हो, इसी को पीर भी बोलते हैं। तो पता ये चला शेख मुरब्बी और पीर जिंदा चाहिए, कब्र से फैज नहीं। पर कोई फैज क्या, मैं मुनकिर नहीं हूं, हमारे अकाबरीन कब्र के फैसले के मुनकिर नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों उससे इस्लाह नहीं होती। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, कोई मसला अटके हजरत पहुंच जाते इमाम साहब की कब्र पर और अल्लाह ताला से वो दुआ, फैज कैसे लेना है? अब ये देखिए, अब ये नहीं कि निकालो जी, जी मेरे औलाद नहीं, बाबा जी कब्र में लेटे औलाद दो, उससे नहीं मांग रहे, बल्कि यूं मांग रहे दुआ। इमाम साहब, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े आलिम मुज्तहिद वक्त, दुआ करें कि अल्लाह ये मेरा उस्ताद है, आपका मकबूल बंदा है, मेरी ये मुश्किल है, ये अल्लाह इसके सदके में मेरी इस मुश्किल को आसान कर दीजिए। तो हो गया वसीला, तो ये है वो कफैद जो कि कुबूर से मिलता है, इसका सही तरीका बता दिया जो हमारे अकाबरीन का तरीका है कि औलाद दे या फला दे, तो ये सब बेकार बातें। औलाद अल्लाह ताला देने वाले। एक बुजुर्ग के पास कोई गया, उसने कहा हजरत औलाद की हो रही, कोई तावीज दे दीजिए। तावीज बनाकर दिया, फरमाया तावीज के भरोसे न रहना, अपनी मेहनत भी कुछ करना। तो ये फैज है जिसके हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मानते हैं, लेकिन उससे मांगना कि पुत्र दित्ता भुल्ले शाह दित्ता। एक औरत की औलाद नहीं हो रही थी, उसने मन्नत मांगी कि मैं औलाद होगी तो मैं भुल्ले शाह के मजार पर जाऊंगी, बाबा भुल्ले शाह। अल्लाह की शान, अल्लाह ताला ने उसे औलाद दे दी। अब वो शौहर के पीछे पड़ गई कि जा चल। उसने शौहर ने कहा कि भाई ये क्या, वहां क्या जाना है? कहा नहीं बस जाना है। जिद की, जनहट मशहूर है, तीन हटे मशहूर है, राजहट, जनहट और बालिक हट। राज माने बादशाह, बादशाह की जिद, कुत्ते खाएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा, और जनहट औरत की जिद, और तीसरी बालिक हट। बालिक कहते हैं बच्चे को, बच्चे की जिद, और खुसूसन वो बच्चा अगर यतीम हो और बादशाह का बच्चा, या बादशाह का बच्चा हो या मौलवी का बच्चा हो, और अगर पीर का बच्चा हो तो अलमान वाला हफीज। हकीकत तो हकीकत है, क्योंकि बिगड़ता है वो, हर आदमी हाथों में लेता है ना, तो उसकी हट बहुत मशहूर है। औरत जिद की तो शौहर का ले चल, उसने कहा अच्छा भाई चल, दिमाग खा रही है। अब वो गए वहां पर, अब वो जाते उसने तो नारे बुलंद कर दिए, पुत्र दित्ता भुल्ले शाह दित्ता, पुत्र दित्ता भुल्ले शाह दित्ता। शौहर सुनता रहा, बड़ा उसको सुनता रहा, गुस्सा आने लगा। आखिर जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पंजाब की लुंगी थी उसकी, थोड़ा सा पर्दा हटाकर उसने कहा छोटा शाह ना होंदा तो बुल्ले शाह की थू दिंदा। सब बुजुर्गों की कबूर से फैज मिलना हम इसके मुनकर नहीं है, लेकिन उसका तरीका जो सही हमारे अकाबरीन ने सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह वो ये कि ये एक मकबूल, या अल्लाह ये आपका एक मकबूल बंदा है, आप इसके सदके में आप ये काम कर दीजिए। काम फाइल अल्लाह ताला है, यही समझने की चीज है कि फाइल वो कब्र वाला नहीं है बल्कि फाइल अल्लाह ताला है। हाँ ये जरूर है कि हमारा कोई प्यारा मकबूल होता है, उसके जरिए से जब कोई आदमी हमसे कुछ काम करवाना चाहता है हम उसका काम जरा जल्दी कर देते हैं। तो लगा उसी तरह से ये अल्लाह के मताला के जो मकबूलीन बंदे फाइल यानी काम करने वाले तो अल्लाह ताला है, लेकिन अपने प्यालों की लाज रखते हैं, ये बात है सारी, इसको फैज बोलते हैं। लिहाजा पीर और शेख जिंदा होना चाहिए। जो बुजुर्ग इंतकाल फरमा गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनकी अजमत सर आंखों पर है, उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत हम अपनी नजात का जरिया समझते हैं, लेकिन उनसे इस्लाह नहीं हो सकती। हाँ उनकी बातें, उनकी बातों से फायदा होगा, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि भाई साहब जब कोई बीमार होता है, जब कोई बीमार होता है तो वो किसी पुराने हकीम या डॉक्टर की किताब पढ़कर इलाज नहीं करता, बल्कि पुराने हकीम या डॉक्टर की बातें वो किसी डॉक्टर के जरिए समझता है। वो कहते हैं, उसको बताता है, कहता है जी मेरा इलाज करना हकीम अजमल खान के तरीके पर। कहेगा अच्छा हकीम, लेकिन हकीम करेगा? वो कहेगा अच्छा चलो भाई हम ठीक है उस तरीके पर करेंगे। तो पता ये चला कि पुराने हकीम और डॉक्टर को समझने के लिए डॉक्टर होना चाहिए। लगा पुराने बुजुर्गों की जो बात है अमल तो उसी पर हो रहा है। भाई ये जो आज भी जो बातें पेश की जा रही है कोई नई बात थोड़ी है, ये तो वही 1400 बरस पुरानी शराब है। ये खमरे कोहन तो कवी तर है लेकिन, आ मेरे मुर्शिद का शेर है, वो खमरे कोहन तो कवी तर है लेकिन, वो 14 बरस की पुरानी शराब, कुरान और शरीयत और सुन्नत की शराब, वो क्या है, जबरदस्त है, वो कवी तर है, वो खमरे कोहन पुरानी शराब अल्लाह ताला के इसको मोहब्बत की। अगर कमर में दर्द ना हो तो टेक न लगाए, अगर बीमार हो तो ठीक है आगे हो जाए। आई शाबाशी, दगा मजबूत, हाँ कमर मजबूत। वो खमरे कोहन तो कबीतर है, लेकिन वो पुरानी शराब कैसी कबीतर है, लेकिन नए जामो मीना आता हो रहे हैं। उस शराब को पेश करने के लिए बर्तन नए नए हैं बस। दादा शरीयत और सुन्नत वही है, वो नहीं बदली जा सकती। कोई आलिम, कोई अल्लाह वाला, कोई पीर उसको बदल नहीं सकता। हाँ, उसको समझाने के, उसको पेश करने के, मिसाल से समझाने के लिए इस जमाने की मौजूदा मिसालें हो सकती है। समझ में आया ना जी? शराब वही होगी अल्लाह ताला की मोहब्बत की, बस उसको समझाने के लिए ताबीर अलग है। जैसे पहले जमाने में पायलट नहीं होते थे, तो अब इस जमाने में समझा दिए कि भाई मुरब्बी ऐसा है जैसे पायलट हो। देखिए, अब शेख वही बात हुई कि मुर्शिद और रहबर चाहिए, लेकिन ऐसा कि जैसे पायलट होता है। अब बात पुरानी है, पेश करने का अंदाज नया हो गया। सही है ना जी? हॉटपॉट नहीं होते थे, पहले थैलियां नहीं होती थी, बर्तन ले जाते थे, जी दूध दे दो या सब्जी लाओ, अपना बर्तन ले जाना पड़ता था। अब इस जमाने में शॉपिंग बैग है, चलो भाई चीज वही सब्जी है, रखकर उसमें ला रहे हैं, बस बदल, रखने का अंदाज बदल गया बस। शेख जो है वो जिंदा होना चाहिए, पीर जिंदा पीर हो, क्योंकि इंजेक्शन लगाना होगा। अगर इंजेक्शन लगाने की जरूरत है और नुस्खा लिखना है, कैसे लिखेगा डॉक्टर जबकि वो कब्र में लेटा हुआ है? अब इंजेक्शन लगाने के लिए चाहिए, तो उसी तरह से शेख अब उसकी मुरीद की इस्लाह करनी है, कोई बात बतानी है, कोई समझानी है, वो अपना मसला पेश कर रहा है, तो शेख सुनेगा, उसका जवाब देगा। इसलिए जिंदा चाहिए, एक खसूसियत। दूसरी खसूसियत यह है कि वो जो पायलट हो, वो किसी पायलट की सोबत में रहा भी हो। दादा जो पायलट बनता है, पहले वो खुद जहाज नहीं उड़ाता, कि हमेशा पहले मुआविन पायलट बनता है, जिसको को पायलट भी कहते हैं, वो मुआविन होता है। पहले सीनियर पायलट की सोबत में रहता है, उससे उसूल सीखता है। जैसे डॉक्टर है, वो डॉक्टर बनने के बावजूद जब तक सीनियर डॉक्टर के साथ नहीं रहता, वो डॉक्टरी नहीं कर सकता। एक साल हाउस वाइफ होते हुए भी है, जब तक हाउस जॉब न करे वो डॉक्टर नहीं कहलाता, डिग्री नहीं मिलती उसको। वो लाख समझाए कि भाई साहब मेरे पास हाउस वाइफ है और मैं अपने हाउस में जॉब करता भी हूं। कहेंगे वो हाउस जॉब आपकी अच्छी दीजिएगा, लेकिन पहले आप हमारी हाउस जॉब करें। आदमी ने अपने साथी से कहा कि यार तुम अजीब हो, सुना है कि तुम अपनी बीवी के साथ मिलकर बर्तन धोते हो। उसने कहा इसमें कौन सी ऐसी बात है, आखिर वो भी तो मेरे साथ मिलकर रोटी पकाती है। तो पता ही चला किसी के साथ रहा हो। इसलिए हमेशा जब किसी आलिम की बात होती, किसी अल्लाह वाले की बात होती, सबसे पहला सवाल ये होता कि इसका उस्ताद कौन है। पहला सवाल, सवाल क्या कि जी ये शागिर्द किसका है, इसका उस्ताद कौन है, ये पहला सवाल होता। पता ही चला के वो शेख और मुरब्बी, किसी की तरबियत में मुरब्बा बना हो, पहले मुरब्बा बनेगा फिर मुरब्बी बनेगा। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया, अगर कोई आप जाए बाजार में जाए और कहे मुझे ऐसा आम का मुरब्बा चाहिए जिसका कोई मुरब्बी ना हो, यानी खुद आम गिरे, सेब गिरे, खुद ही जाए कढ़ाई में जाए, मुरब्बा बने और शीशे के मर्तबा में जाकर दुकान में सज जाए, ऐसा मुरब्बा मिलेगा जनाब? मुरब्बी चाहिए कि नहीं? लादा वो जो ये कहे कि मैं खुद बखुद अल्लाह वाला बन गया और मेरा कोई मुरब्बी नहीं है, मेरा कोई उस्ताद नहीं है। तो जिसका मेरे मुर्शिद फरमाया करते हैं, जिसका कोई मुरब्बी नहीं होता, उसका मुरब्बी शैतान और नफ्स होते हैं। जैसे शैतान था, उसका मुरब्बी कोई नहीं था, तो उसका नफ्स उसका मुरब्बी था, वो नफ्स सिखाता था। क्या देख, सजदा न करना, तू बड़ी चीज है भाई। शेख जिंदा पायलट चाहिए, शेख जिंदा और सोबत याफ्ता भी हो, किसी अल्लाह वाले के साथ उसने वक्त गुजारा हो, अपनी इस्लाह के लिए रहा हो, उसकी सोबत में एक मुद्दत तक रहा हो, फिर उस पायलट को डिग्री मिलती है। वो सीनियर पायलट बोलते हैं हाँ ये पास है जनाब, تو شیخ کی طرف سے اجازت یافتہ بھی ہو، خلافت پائی ہو اس نے، اس سے بیعت ہو، ہر کسی سے نہ ہو. ہو گیا نا جی. پھر وہ جو شیخ ہے، وہ جو پائلٹ ہے، اب جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، کہاں جانا ہے جی؟ عمرہ کرنے جانا ہے یا حج کرنے جانا ہے؟ اب وہ جہاز پر بیٹھا تو اعلان ہو رہا ہے کہ یہ جہاز، اعلان کیا ہو رہا ہے کہ یہ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر جا کر اترے گا، اور وہ اس کا رستہ مغرب کی طرف ہے. اگر ہم کراچی سے جائیں تو جدہ ہمارے مغرب کی طرف پڑتا ہے، اس لیے ہم جو سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ مغرب کی طرف رک کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ نقشے کے اعتبار سے وہ مغرب کی طرف ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ مغرب میں جانے کے بجائے مشرق کی طرف چل پڑا جہاز. پوچھ رہے بھائی یہ رستہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ چلا کہ جی پائلٹ کو تو جدہ کا رستہ ہی نہیں معلوم، وہ تو ماسکو کا رستہ جانتا ہے، آسٹریلیا کا اور جاپان کا، ٹوکیو کا اور بینکاک کا رستہ جانتا ہے، وہ خبر ہی نہیں ہے اس کو مشرق کا کہ جدہ کدھر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو جہاز جس میں بیٹھے آ وہ رستے کے سے باخبر ہو، اس لیے وہ جو شیخ ہے وہ اس باتوں کو سمجھتا ہو. میرے دوستو واقعہ اس پر سناتا ہوں. ایک صاحب ہے جو مجھ سے بیعت بھی ہے. تو ایک دن اب جب میں سفر پر گیا ہوا تھا، جب سفر سے واپس آیا ملنا مجھ سے ظالم جہاں کہنا آپ ادھر آ جائیں. میں مسئلے پہ عمل کیا ماشاء اللہ. واپس آیا تو مجھے بتانے لگے وہ کہ میری ایک بہن کی دوست ہے، اس کے پاس میرا موبائل کا نمبر، اس کے ذریعے سے وہ کبھی کبھی میری بہن کو کچھ پیغام بھیجے. کہا یہی کام اس نے کیا کہ اب اس نے مجھے ایس ایم ایس بھیجے وغیرہ وغیرہ قسم کے. اب وہ ایس ایم ایس بھیجے تو انسان ہے گدگدی لگتی ہے. اس نے کہا کہ بس میں بھی مشغول ہو گیا اس کے ساتھ، میں نے جواب بھیجنا شروع کر دیے. ایک ایک رات میں 100-100 ایس ایم ایس کا تبادلہ ایکسچینج ہو رہا ہے. اور سناؤ کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے، کھانا کیا پکایا ہے، کپڑے کیا ان سے پہنے ہیں، پھر آگے ظاہر بات ہے آگے بات چلتی ہے. اب اس کے بعد بات بڑی نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکی نے کہا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ. تو اب یہ کچھ جھجکے، اس نے بار بار اس پر تقاضا کیا آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے. اب یہ بھی اس پر راضی ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا میں آؤں گا. پر اللہ تعالی کی شان کہ اس کا لڑکی کا جو بھائی تھا اس کے ہاتھ اس کا موبائل لگ گیا. اب اس نے جو میسیجز پڑھے تو اس نے کہا اچھا چلو اب دیکھتے ہیں. اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکی کی طرف سے وہ میسج کرتا رہا. دو دن تک یہی تماشا چلا. اب جناب اس نے وقت ہو گیا طے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے امام سے پوچھا کہ بھائی میں اس ایسے ایسے ایک لڑکی ہے تو میں اس سے ملاقات کروں کہ نہ کروں؟ تو اس نے کہا بھائی تمہارا تو شیخ اور مربی ہے، اس سے جا کر پوچھو. تو چونکہ میں سفر پر تھا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ تو سفر پر ہے تو اس لیے اب مشورہ کر رہا ہوں، تم بتاؤ میں کیا کروں. انہوں نے کہا تمہاری نیت کیا ہے؟ میں کہا میری نیت تو ہے کہ ملنا نہیں ہے اور ملاقات نہیں کرنی. نہیں ہے اور ظاہر بات ہے اس نے کہا کہ میں خانقاہوں میں جانے والا ہوں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نمازی ہوں، تو میں کیسے ملوں اس سے؟ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن تم ایک دفعہ ضرور ملو جا کر اس سے. कहा इसलिए जाकर मिलो कि उसको समझाओ कि भाई मैं ऐसा आदमी नहीं हूं।
आपकी जगह तो आप बार बार उठ के क्यों जा रहे हैं? टेलीफोन की वजह से ना, कर देना, जरूरी बात है कोई, तो फिर यूं करें कि आप पीछे बैठ जाए, है ना, ताकि वो तो शरई मसला है और वो इंतजामी मसला भी है। आपका दिल इधर होगा ना उधर होगा।
तो कहने लगे कि उन इमाम साहब ने कहा उसको कि भाई तुम एक दफा जाके मिलो, उसको समझाओ कि मैं वो आदमी नहीं हूं। देखो मैं खानकाई हूं, बुजुर्गों के पास जाता हूं, जिक्र करता हूं, सोबते मुर्शिद में बैठता हूं, मैं दाढ़ी भी है मेरी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं भाई। अब उसने कहा तो उसने कहते हैं मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे शेख तो इससे भी मना करते हैं, ये भी जाकर मत बोलो। अब बताइए, यानी आप आगे आ जाए। अब आप देखिए, अब एक लड़का गया एक लड़की के पास, अब नजरें झुकाकर, हाथ में तस्बीह है, लड़की सामने खड़ी है, अब वो सर झुकाकर कह रहे हैं देखिए मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं अल्लाह वाला बनना चाहता हूं और मैं आपको देखना मना है, इसलिए मैं आपसे नजर भी बचा रहा हूं और हमारे शेख भी मना करते हैं। अब लड़की ने पकड़ लिया हाथ, भाईजान आप कहां जा रहे हैं हमें छोड़कर? अब आप बताइए, अगर लड़की सिर्फ हाथ भी पकड़ ले और उसने समझो रोना शुरू कर दिया कि आप अकेले अल्लाह वाले बन रहे, मुझे नहीं बनाएंगे, अल्लाह वाला बनना है तो मुझे भी तो बनाइए ना, हम भी अल्लाह वाले बने, मैं अल्लाह वाले बनूं, आप अल्लाह वाले बने, हम और आप अल्लाह के लिए प्यार करेंगे। सब ड्रामे हैं ये सब जो होते हैं, मेरा और आपका प्यार अल्लाह के लिए होगा, जो आप अपने शेख से बातें सीखे वो मुझे भी सिखाएं। आप इल्म हासिल कर रहे हैं, अगर आप मुझे बताएंगे नहीं, बताइए मैंने कुरान मजीद गलत पढ़ा और आपने मुझे सिखाया नहीं, तो आप जन्नत में चले जाएंगे और मैं जहन्नम में, कल कयामत के दिन मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगी। नफ्स ऐसे चक्कर डालता है। वो जनाब पहुंच गए वहां पर, उनके कहने पर बहुत क्या, उन्होंने कहा भाई मेरे शेख तो मना करते, जाओ भी मत। अब देखिए ना, एक साहब है वो भी ऐसे किसी लड़की के चक्कर में मुबतला, अब उनका ताल्लुक हुआ तो उनको समझाया कि भाई देखो तुम सबसे पहला तो काम करो, उस गली में जाना छोड़ो और अपनी मोबाइल की सिम बदलो। उन्होंने जाना छोड़ दिया, मोबाइल की सिम बदली और इतने अल्लाह वाले हैं कि फोन करके लड़की को कह रहे हैं कि देखो अब मैंने अपना फोन बदल लिया, सिम बदल लिया, अब खबरदार मुझे फोन मत करना। मीर कितने सादा हैं रशीद साहब, मीर कितने सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। अब उस लड़की को फोन करके कह रहे हैं मैंने अपना नंबर बदल लिया है, अब मेरे पास अब मुझे आइंदा फोन नहीं करना ना मुझे SMS करना, ऐसे सादा है, उसको फोन करके मना कर रहे हैं। अब खैर वो पहुंच गए, अब समझाया तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब ने समझाया, अरे भाई तुम जाओ उसको बताना पड़ेगा, बताओ समझाओ। अब वो पहुंच गए वहां, तो लड़की तो क्या लड़का था, पहले तो करीब जाते क्योंकि एक हर वक्त गलत बात बताए कि ये गलत बात है तो दिल डरता है, लादा गुना की अलामतों में से एक अलामत ये, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्म मा हाका फी सदरिक शय, गुना यह है कि जो तेरे दिल में खटक पैदा करता है। यार कुछ गड़बड़ है ना, मसला मैं सच अर्ज करता हूं, मसला अगर ना भी मालूम हो लेकिन उसको देखकर खटक पैदा हो जाएगी। लादा अब उनका दिल भी घबरा रहा है, दिल में घबराहटे भी है, लादा करीब नहीं गए, पहले दूर से मैसेज किया अब कहां हो, जवाब आजा मेरे बालवा तेरा इंतजार है, जल्दी आ जा। अब कहते कि उसी वक्त ईशा की अजान शुरू हो गई, जो मुलाकात, मैंने कहा कि चलो अब बस नहीं जाना नमाज पढ़ने के लिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद। उधर उस लड़के को वो भी समझ गया, अब वो आया और उसको आगे पकड़ लिया। हाँ तुम क्या करने आयो? मैं भाई नमाज पढ़ने आयो। जो आदमी चोर होता है उसके अंदर घबराहट होती है, वो घबराता है। उसने कहा लाओ मोबाइल दिखाओ, नहीं देता। अब वो मोबाइल लिया, उसमें देखा तो सारे मैसेजेस भरे हुए, छीन लिया। फिर दे मार कुटाई, क्योंकि इश्क का इलाज जूता है। ये जब तक हसीना है अपने आशिकों को पिटवाती नहीं है ना, इनको चैन नहीं मिलता। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि रस्ते से बाखबर होना भी जरूरी है, सिर्फ आलिम बनना काफी नहीं है। उस मसले को इस्तेमाल करना यह भी जरूरी है। अब देखिए ना, अगर एक आदमी ने दाढ़ी रखी, अब मां बाप कह रहे दाढ़ी मत रखो, शरीयत का हुक्म यह है कि मां बाप की नाफरमानी ना करो, यह हुक्म है। अब मां बाप कह रहे दाढ़ी मत रखो, अब आप क्या करेंगे? अब देखिए, एक तरफ तो बाज़े लोगों ने उस हदीस शरीफ को पढ़ा, और वह हदीस शरीफ क्या है कि ला ताअति लिमखलूक फी मासियतिल खालिक, कि जब मालिक की नाफरमानी हो तो मखलूक की इताअत मत करो। यह हदीस है और बिल्कुल सही है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में मां बाप की भी नहीं माननी। लेकिन उसका तरीका क्या है? ये जाओ जाओ जाओ, हम अल्लाह की मानेंगे तुम्हारी नहीं मानेंगे, जाओ जाओ हटो। एक तो ये तरीका जो बिल्कुल गलत है। मेरे मुर्शिद को अल्लाह ताला जजाए खैर दे, समझाया कि देखो अल्लाह ताला की माननी है, मां बाप की नहीं माननी, लेकिन मां बाप से बदतमीजी करना भी जायज नहीं है। यानी जब मां बाप से बदतमीजी कर रहे हटो और ये और वो, नहीं, खामोश हो जाओ, मत बोलो। एक दफा कह दो कि अब्बा ये मसला है, मेरी अम्मा ये मसला है, आराम से। नहीं समझ में आ रही, खामोशी इख्तियार करो। लेकिन मां बाप से बदतमीजी करना हरगिज जायज नहीं है। खामोश रहो, दाढ़ी ना काटो, उनकी भी ना मानो। हां फरमाया करने का काम यह है कि अब्बा के पैर दबाओ, उनके सर में तेल मालिश करो, और अब्बा को चिकन टिक्का पसंद है, नहारी नहारी खिलाओ, खिदमत करो, दिल खुश करो। लेकिन साथ में उनके साथ बदतमीजी भी ना करो, उनको इधर बिठा दो। अब बात भी अल्लाह की मानो, लेकिन इस तरह भी मानो कि मां बाप से बदतमीजी मत करो। थकना और ये तो पता चला, एक है मसले का सीख लेना, एक है उस मसले पर अमल करना। इसके लिए फहम की जरूरत है मेरे दोस्त। जैसे एक है बंदूक रख लेना और एक है बंदूक चलाना, बड़ा फर्क है जनाब। क्योंकि बाजे लोग हैं, बंदूक चलाने से पहले उनको टेम्पर पहनना पड़ता है, वरना दो बंदूकें चलती है एक साथ। बंदूक रखना और है, बंदूक चलाना और है, गाड़ी का रखना और है, गाड़ी का चलाना और है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास लाखों रुपए की गाड़ी है लेकिन चला नहीं सकते। वो कहते हैं जैसे ही हम रोड पर निकलते हैं बस हमारा दिल कांपने लगता है, हम गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसे लोग भी हैं, और लाखों रुपए माशाल्लाह ने पैसा बहुत दिया लेकिन चला नहीं सकते वो। लिहाजा इसलिए जरूरत इस बात की है कि वो शेख उस रस्ते से बाखबर भी हो, इन चीजों को समझता भी हो, और उसको इस्तेमाल कैसे करवाना है, शरीयत के मसले पर अमल कैसे करवाना है, ये शेख का काम है। आलिम और मुफ्ती मसला बताएगा, अब शेख का काम है कि उस मसले पर अमल करवाना, अल्लाह ताला की मोहब्बत की जिस दर्जे की जरूरत है, और गैरुल्लाह की जो जरासीम को जो मारना है उस जरासीम को मारकर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करके उस मसले पर अमल करवा दे। एक काम हो गया कि पायलट रखे, यानी शेख और मुरब्बी हो। और बात मौजू क्या था कि जी हम अल्लाह, हमारी रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़ जाए, हमारे कल्ब व जान अल्लाह ताला के साथ चिपक जाए, इसी को रूहानियत बोलते हैं। उसके लिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया तीन काम करो। एक काम तो ये कि अपने सर पर बड़ा रखो, मुशीर होना चाहिए, मशवरे की जरूरत होती है। ऐसे काम है इंसान छोटी सी बात होती है नजर नहीं आती। अब एक छोटा सा मसला है, एक इमाम है कराची के अंदर, अब उनकी कमेटी वालों ने उनसे तकाजा किया कि आप नमाज में कुरान मजीद पढ़े फजर की नमाज में, से पूछा और उन्होंने कमेटी वाले से कहा, कहने लगे भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे मशवरा किया। मैंने कहा कि भाई देखो इसको मत छोड़ो, असल चीज ये है कि ये देखना ये चाहिए कि ये सुन्नत है कि नहीं है। लहरा सुन्नत जो है तवाले मुफस्सल है, सहाबा के दौर से लेकर आज तक असलाफ का तरीका ये रहा कि वो क्या करते हैं कि सुन्नत है कि तवाले मुफस्सल यानी फजर में सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज तक पढ़ना ये सुन्नत है। हां कभी कभी किसी और जगह से भी पढ़े, और हमारे असलाफ का तरीका यह था कि वो खुद कुरान मजीद नमाज में पढ़ते थे लेकिन जो इंफरादी नमाज होती थी उसमें पढ़ते थे। तो मैंने कहा आप उनको ये मत सोचे, ये मत कहें कि ये तो आप अपनी कमजोरी पेश कर रहे हैं, बल्कि ये बात पेश करें भाई सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत ये है कि तवाले मुफस्सल यानी सूरह हुजरात जो कि 26वें पारे में है, उसे सूरह बुरूज व समाई दातिल बुरूज वाली सूरत जो 30वें पारे में है, इसका पढ़ना सुन्नत है। हाँ इमाम मस्जिद जो है वो कभी कभी ऐसा नहीं है कि वो दूसरी जगह से नहीं पढ़ सकता, वो बिल्कुल पढ़ सकता है, उसके लिए बिल्कुल जायज है, लेकिन सुन्नत को मुकद्दम करें। अब ये बात उन्होंने आगे पेश की, उन्होंने कहा हाँ ठीक है भाई आप सुन्नत, बस इतनी सी बात थी। तो बाज मरतबा इंसान छोटी सी बात होती है समझ में नहीं आती, इसलिए हदीस शरीफ में आया अल मुमिनु मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना है। क्या मतलब? अल मुमिनुल कामिल, मोमिन कामिल जो है वो मोमिन नाकिस के लिए आईना है। जैसे अगर हमारे चेहरे पर कोई धब्बा होगा तो वो हम खुद नहीं देख सकते, या तो दूसरा हमारा दोस्त बताएगा या आईना बताएगा, इसलिए उसको आईने से ताबीर की। और आईने से ताबीर इसलिए की कि आईना छुपाता नहीं है, क्या अगर चेहरे पर काला धब्बा लगा है तो आईना छुपाता नहीं है, पता ये चला कि दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे ऐप को छुपाए नहीं, दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे ऐप को छुपाए नहीं। लेकिन ऐप को छुपा न छुपाने के माने ये नहीं है कि वो दोस्त नहीं है जो हमारा ऐप सबसे तो कहता फिरे और हमें नहीं बताता, ये हमारा दोस्त नहीं है, ये हकीकत में हमारा दुश्मन है। हमारा दोस्त वो है कि जो सबसे छुपाए लेकिन हमको बताए। जैसे आईना किसी और को नहीं बताता बल्कि वो जो साहिबे जरूरत है उसको बताता है आईना कि देखो तुम्हारे अंदर ये खराबी है। दादा पता चला शेख और मुरब्बी ऐसा होना चाहिए कि जो समझाए और बताए कि जनाब देखो ये जरूरत है, ये नहीं कि सबको कहता फिर रहा है या जलील करता फिर रहा है, नहीं, अरे फला है ना फला, उसको तो बता नहीं रहा, सबको कहता फिर रहा है कि उसके अंदर ये खराबी है, वो हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। और हमारा दोस्त वो है जो हमें तन्हाई में ले जाए, भाई साहब आप माशाल्लाह अच्छे खानदान अच्छे आदमी है, जरा देखिए अपने गालों को चिकना करने से क्या फायदा है। एक मुट्ठी दाढ़ी का रखना वाजिब है, और दाढ़ी का मुंडाना शेव करना या एक मुट्ठी से चावल के दाने के बराबर कम करना यानी ट्रिम करना ये हराम और गुनाह कबीरा है, वो समझाएगा। कि एक दिन आह मेरे मुर्शिद फरमाया करते हैं एक दिन कब्र में जाओगे फिर ये गाल काम नहीं आएंगे, फिर क्या करेगा, उस वक्त क्या चीज काम आएगी, उस वक्त शरीयत और सुन्नत पर चलना काम आएगा। ये हमारा कारोबार, ये हमारा माल, ये हमारे मकान, ये बैंक बैलेंस, एयर कंडीशन, ये लेटेस्ट मोबाइल, ये चश्मे, ये घड़ियां, ये लिबास सब यही रह जाएगा। उस वक्त ये जो अमाल, ये जो जिनको हम छोटा समझते हैं, हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बजायर तो है ये छोटी सी बातें, बजायर तो है ये छोटी सी बातें, जहां अफसोस मगर ये चिंगारियां हैं। एक आलम के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत की आग लगाने के लिए काफी है। लगा हमारा हकीकी दोस्त हुआ है जो हमारे ऐप को हमको बताए, वो हमारा दोस्त है, बजायर वो दुश्मन लगता है लेकिन वो हमारा खैरखा है जो दूसरे से छुपाए और हमको बताए। शेख और मुरब्बी उसका इंतखाब, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं अगर पीर बनाते हुए शर्म आती तो मुशीर बना लो, कि जी पीर बनाएंगे तो सांप भी तो हम अपने बड़े आदमी होकर कैसे झुका। अच्छा भाई मुशीर बना लो, देखो ना प्रॉपर्टी टैक्स में प्रॉपर्टी के उसमें प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मशवरा करता है, स्टेट एजेंट से। इनकम टैक्स का मामला हो तो इनकम टैक्स एडवाइजर से मशवरा करता है, सेल टैक्स के लिए सेल टैक्स कंसल्टेंट रखता है, वगैरह वगैरह। यहां तक के लिए शादी भी होती है तो वेडिंग कंसल्टेंट रखता है। चाहे के साथ मैं अपने बच्चे को किस स्कूल में दाखिल करूं, किस मदरसे में दाखिल करूं, शादी होती है अपनी बीवी को क्या गिफ्ट दूं ताकि मुझे लिफ्ट मिल जाए, और वो लिफ्ट भी जरा वो कह रहे स्विफ्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर, आजकल खुले ना लिखते हैं स्विफ्ट रजिस्ट्रेशन, और वो स्विफ्ट नहीं है। तो जो जो इंसान जाता है उसी को पता चलता है कितनी स्विफ्ट है। ये तसहील मुराद है और यहां तसहील नहीं है। तो इंसान हर काम के लिए मशवरा करता है, यहां तक कि कपड़ा भी देखता है, पूछता है कि भाई साहब कपड़ा कहां से लूं, कितनी चीजें, हर चीज में मशवरा करता है। गाड़ी क्या खरीदता है तो मशवरा करता है, दुकान लेता है तो 10 आदमियों से पहले पूछता है कि भाई साहब, मकान लेता है 10 मोहल्ले वालों से पूछता है भाई साहब ये सही है किराए पे है, किराए पे देना होता है 10 आदमियों से पूछता है। लेकिन हमने दीन को दीन के मामले में मशवरा नहीं करते, अपनी जो मर्जी आए वो कर डाला, मशवरा करे तो देखे कैसे। मेरे मुर्शिद फरमाते कि देखो यूं तो अल्लाह का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी अल्लाह वाले का हाथ हाथ में आ लगे तो न सिर्फ ये कि रास्ता आसान बल्कि लजीज और मजेदार भी हो जाता है। फिर मेरे मुर्शिद ने यह शेर पढ़ा, किसी का शायर का शेर है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ पे आ लगा तो चिराग राह के जल गए। सामने की चीज मुश्किल नजर आती, इसलिए हजरत मौलाना शाह राव साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा पीर हैं, वो फरमाते कि देखो इल्म भी है रोशनी भी है। इल्म है कि जिस सेब खाने से ताकत आती है, आयरन मिलता है, रोशनी भी है, सेब नजर भी आ रहा है लेकिन कमजोर है उठा नहीं सकता, नजर भी आ रहा है और इसको इल्म भी है कि सेब खाने से ताकत आती है लेकिन जनाब अब वो इतनी हिम्मत नहीं उठ रही। फरमाया कि इसी तरीके से मसला मालूम है कि दाढ़ी भी रखनी है, जमात से नमाज भी पढ़नी है, अजान की आवाज भी आ रही है, वक्त भी है, उठता नहीं है। क्यों? पता ही चला कि ताकत की कमी है। और सोहबत का यह फायदा होता है, लादा देख लीजिए मेरे दोस्तों, चार दोस्त घूमने के लिए जाएं, तीन नमाजी है एक नमाजी नहीं है, जब नमाज का वक्त होगा तो वो तीन तो नमाज पढ़ेंगे, चौथा ऐसे ही बैठा रहेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? क्यों? ये सोहबत है। हालांकि ये कामिलीन नहीं है, सिर्फ नमाजी है, तो नमाजी की सोहबत से नमाजी बन जाता है, और अगर एक नमाजी है और तीन नमाजी नहीं है तो ये भी छोड़ देगा। तजुर्बा तो पता ही चला सोहबत का फर्क होता है मेरे दोस्त। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। जब एक आम मुसलमान की सोहबत से फायदा होता है तो वो जिनके कुलूब अल्लाह ताला की मोहब्बत से लबरेज है उनकी सोहबतों से ईमान में कैसी तरक्की होगी। लादा तजुर्बा करके देखे, बैठ कर देखे, तो एक काम हो गया ना, वो ये कि पायलट रखे अपनी रूह पर, अपने दीन के लिए मशवरा करे, मुशीर रखे, दीनी मुशीर हो, फिर देखे दीन में कैसी तरक्की होती है। दूसरा काम जहाज उड़ाने के लिए जो दूसरा काम है वो ये कि जहाज के अंदर स्टीम चाहिए, पेट्रोल, और जब जहाज उड़ता है ज्यादा क्या करता है कि जहाज को पहले रनवे पर लाकर फिर एकदम तेज उसको दौड़ाते हैं, पूरी रफ्तार से वो दौड़ता है, फिर उसके बाद अचानक उठता है। जिस वक्त जहाज जमीन को छोड़ता है तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया चूंकि जहाज के जितने अज्जा हैं, जिन चीजों से जहाज बना है वो सब जमीनी है, जैसे लोहा तांबा रबर वगैरह वगैरह जितनी चीजें हैं वो सब जमीन की चीजें हैं, लादा जो चीज जब अपने मरकज से जुदा होती है तो मरकज से जुदा करने के लिए निहायत जबरदस्त कुव्वत और ताकत चाहिए, स्टीम चाहिए। फरमाए हम जमीन से पैदा हुए, हमारे सारे अज्जा जमीन ही है। लादा हमारी रूह को जमीन से उड़ाकर अल्लाह ताला से ताल्लुक आसमानों पर जाने के लिए जबरदस्त स्टीम और कुव्वत और ताकत की जरूरत है। उसके लिए क्या काम करें? उसके लिए जिक्रुल्लाह करें, जिक्र का एहतमाम करें, इससे रूह में ताकत पैदा होती है। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया, फसअलु अहला जिक्री इन कुंतुम ला तअलमून। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पूछो, सवाल करो, किससे सवाल, किससे करो? अहलु जिक्र से। अहलु जिक्र कौन लोग? उलमा फरमाते मुफस्सिरीन कि अल मुराद बी अहलि जिक्र अल उलमा, अहले जिक्र से मुराद यहां उलमा है। क्यों? क्योंकि आगे फरमाए इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम जानते नहीं हो, ला तअलमून हो तुम, तो किसे पूछो? यालमून से पूछो, जो जानने वाले हैं। तो पता ही चला कि जो जानते नहीं है वो जानने वालों से पूछे, उससे मुराद उलमा है। फिर मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि देखो यहां पर अल्लाह ताला ने उलमा को फरमाया अहलु जिक्र। उलमा कौन लोग हैं? अहले जिक्र लोग। फरमाया कि अगर आलिम भी जिक्र नहीं करेगा तो फिर वो कहां से आलिम बना? इस आयत से पता चलता है कि अहलु जिक्र, अहलु जिक्र कौन लोग हैं? उलमा है। यह आयत साफ इस पर दलालत करती है, क्योंकि ला तालमून है, ला तालमून बताता है यालमून से पूछो, और यालमून को अल्लाह ताला फरमा रहे अहलु जिक्र है, जिक्र करने वाले जाकिरीन लोग हैं। अब जो जिक्र नहीं करता, अब मां हर वक्त दूध पिलाती रहे, खुद दूध ना पिए, जूस ना पिए, खाना ना खाए, नतीजा क्या होगा? मां सूख जाएगी और दूध की जगह खून आने लगेगा। तो पता ये चला कि जो दीन के काम करने वाले हैं उनके लिए जरूरी है कि वो जिक्र का एहतमाम करें। हर वक्त दीन का ऐसा काम करना कि अपनी दीन के अपने रूहानी ताकत का एहतमाम ना हो, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमाया? फइज़ा फरगता फंसब व इला रब्बिका फरगब। आ जब आप अपने मनसब से फारिग हो तो अब अपने रब से रगबत हासिल कीजिए, और ये रगबत जिक्र है मेरे दोस्तों। का जो जिक्र नहीं करता उसकी रूहानियत कमजोर होती है। मेरे मुर्शिद ने फरमाया जिक्र की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक आदमी शेख की सोबत में बैठा है, उसको भी जिक्र चाहिए। फरमाया सर्दी का जमाना है, आग चल रही है, जब तक आग के सामने बैठा है उसको गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे ही वो आग से दूर जाएगा, आग से दूर जाएगा, फिर सर्दी से कांपने लगेगा। अब वो हकीम साहब को बताता है कि हकीम साहब जब तक मैं आग के पास बैठता हूं तो मुझे गर्मी लगती है, जब आग से दूर हटता हूं फिर मुझे सर्दी लगती है। हकीम फिर उसको क्या कुश्ता खिलाएगा ताकि उसके जिस्म के अंदर गर्मी आए। दादा ये जो शेख की सोबत से जब तक सोबत में रहा तो क्या कहता है कि जी मेरा दिल सोबत में आता हूं, बयान सुनता हूं, बैठता हूं, फजर की नमाज भी जमात से हो रही है, बाजार में जा रहा हूं नजरें भी नीची हो रही है, जिक्र का एहतमाम भी है, मामूलात भी पूरे कर रहा हूं, बीवी से भी नरम लहजे में बात कर रहा हूं, मां बाप से भी बदतमीजी नहीं कर रहा। लेकिन जहां थोड़े दिन गुजरे, थोड़े दिन गुजरे, अब पता चला जमात की नमाजें छूटना शुरू, अब जी पता चला अब आंख मटकना शुरू हो गया, अब बीवी से भी लड़ाई, मां बाप से बदतमीजी, मामूलात छोड़ना शुरू। उसको चाहिए कि जिक्र का कुश्ता खाए, जिक्र का कुश्ता, इससे रूह में ताकत पैदा होती है। कुछ जिक्र करे, जिक्र का एहतमाम करे, क्योंकि जिस वक्त रूह को जमीन के मरकज और इन जमीनी शक्लों से जब जुदा करना होगा, इस जमीन की मिट्टी के अज्जा से जुदा करने के लिए जबरदस्त रूहानियत चाहिए मेरे दोस्तों, और जिक्र चाहिए, स्टीम चाहिए, ताकि जो है वह कहकर हमारी रूह का जहाज, हमारी रूह का जहाज वो जमीन से उड़कर अर्श आजम पर अल्लाह ताला के कुर्ब के मजे लूटे। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह वालों के लिए जिल्लेहु अंदर दबी चू कोहे काफ, कि अल्लाह वालों के जिस्म का यह हाल है मिस्ल पहाड़ के जमीन पर नजर आता है, लेकिन रूह है वो सी मुर्ग बस आली तवाफ, लेकिन इनकी रूह का आलम यह है मिस्ल मुर्ग सी मुर्ग के پرندے کے عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کے طواف، اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرتی رہتی، جسم کے اعتبار سے زمین پر ہے اور روح کے اعتبار سے عرش اعظم پر ہے. میرے مرشد فرماتے کہ چار تسبیحات کر لو، اس کے لیے مرید ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ذکر شروع کر دے. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ. لیکن میرے مرشد فرماتے ذرا اس ذکر عاشقانہ کرو. ہم نے کہ تسبیح کھینچی، اب سڑک پر کے کنارے بیٹھے حسینوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے. عجیب ہے، یعنی بعضوں نے تسبیح فیشن کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ فیشن ہی تسبیح کیا ہے. اب ہاتھ میں تسبیح ہے، ٹک 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 دانے چل رہے ہیں، اور تیری ماں کو تیری بہن کو یہ بھی چل رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں ٹک 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 ٹک، گالیاں بھی دے رہے ہیں، عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تسبیح نہیں چھوٹتی. یہ تسبیح ہوئی فیشن ہی تسبیح، گالیاں بھی دے رہے ہیں اور وہ ساتھ میں سمجھ میں نہیں آتا. ایک آدمی بات کر رہا ہے، چلو گالی نہیں بات ہی کر رہا ہے، اب میں آپ سے بات کروں تسبیح چلاؤں، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو بات بھی کر رہے ہیں یار، وہ مال آیا نہیں آیا اور وہ ہاتھ خود بخود چل رہے ہیں، تو یہ پتا یہ چلا یہ فیشنی اور دھوکہ دینے والی تسبیح ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں تم ذکر چاہے تھوڑا کرو، لیکن ذرا عاشقانہ ذکر کرو. میرے مرشد سکھایا کرتے کہ لا الہ کی تسبیح کیسے پڑھو، کہ ایک تسبیح ایسے کہ جب لا الہ کہو تو دائیں طرف جھک جاؤ، اور ہلکا سا یہ دھیان کرو تمام غیر اللہ میرے دل سے نکل گئے، اور الا اللہ کہو تو بائیں طرف جھک جاؤ ایسے، اور الا اللہ سے اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا ہے، لیکن گردن ہلانے سے منع کیا سے نہ کرے، بس تھوڑا سا جھومے بھی عاشقانہ کہ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک تسبیح اس طرح کلمہ شریف مکمل کر کے 10-12 مرتبہ، اور ایک تسبیح اس طرح پڑھے، ایک تسبیح سے مراد 100 مرتبہ، 100 دانے کی تسبیح، وہ تسبیح مراد ہوتی ہے 100 مرتبہ، ہو گیا نا جی. ایک تسبیح لا الہ اللہ کا نام کلمہ شریف پڑھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا، اس کا چہرہ قیامت کے دن 14 رات کے چاند کی طرح چمکے گا. کیسی فضیلت ہے ماشاءاللہ. اور میرے مرشد فرماتے ہیں اس تصدیق کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ منہ اجالا کرنے والے اعمال اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائیں گے. ایک تصدیق ہو گئی، دوسری تصدیق اللہ کا نام لے. میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ تو لے اللہ کا نام، تیرا سب بنے گا کام، جو کام بنانے والے اسی کو پکارو بھائی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لو. ہمارے رب کا کیا نام ہے؟ اللہ. اور پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. اور کیسے اللہ کا نام لے؟ ایک زبان میرے منہ میں اور ایک زبان میرے دل میں ہے، اور دونوں سے اللہ کا نام نکل رہا ہے. اللہ جل جلالہ وتعالی شان، اللہ 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 جل جلال و تعالی شانو، ٹھیک ہے نا. اور تیسری تسبیح رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین، استغفار کی کرے. چلو یہ یاد نہ ہو، استغفر اللہ پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی ایک تسبیح پڑھے. اور چوتھی تسبیح درود شریف کی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ایسی عبادت ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں، جس میں اللہ بھی ملتا ہے جل جلالہ اور رسول اللہ بھی ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عبادت ہے کہ ارحم الراحمین رحمت للعالمین دونوں مل رہے ہیں، درود شریف کی ایک تسبیح. اور میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو تم یہ چار تسبیحات پڑھو گے زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگیں گے، اور 24 گھنٹے میں ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 24 کو 60 سے اگر ضرب کر دیں ملٹی پلائی کریں تو 1440 منٹ بنتے ہیں. فرماتے 1440 منٹ میں سے 20 منٹ تم اللہ کو دے دو، باقی 1420 منٹ تمہارے پاس پورا دن ہے، صرف 20 منٹ اللہ کو دے دو. اس سے کیا میرے مرشد فرماتے ہیں ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے پہلے گھڑی آتی تھی جس کو چابی دیتے تھے, ایک مرتبہ چابی دو 36 گھنٹے چلتی. فرمایا ایسے ہی تم ذکر کو ذکر کرو انشاءاللہ 24 گھنٹے گناہ سے بچنے کی ہمت اور قوت رہے گی, اسٹیم پیدا ہوگا. دو کام ہو گئے نا, ایک کام یہ کہ اپنے سر پر کوئی مربی اور بڑا رکھے, نمبر دو کام ذکر کرے, اور تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ کہ جہاز کی ٹینکی میں فیول اور اسٹیم بھر لیا, اب دشمن سے حفاظت کرے, کیونکہ جہاز اڑتا ہے. اب اس نے کہا کہ جہاز اڑے گا دشمن فائر مارے گا, فیول کی ٹنکی پہ فائر مارتا ہے, اس سے ایک تو آگ لگتی ہے, آگ لگتی ہے, اور دوسرا جہاز اڑ نہیں سکتا, آگ اگلگ لگتی ہے. لہذا جب اسی طرح سے کوئی ذکر کرتا ہے, نیک دوست صحبتوں میں بیٹھتا ہے, تو اس کو روحانی پر ملتے ہیں. اب شیطان کیا ہے, وہ پر کو پھڑ پھڑاتا ہے. اب شیطان کہتا ہے اب یہ اڑنے والا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے یہ اڑے, کیونکہ جب جہاز اڑتا ہے اکیلا نہیں اڑتا, اپنے ساتھ پیسنجر بھی لے کے اڑتا ہے. کوئی جہاز 50 سیٹر ہوتا ہے, کوئی 100 سیٹر ہوتا ہے, کوئی 300, کوئی ڈبل منزلہ جہاز بھی ہوتے ہیں, ہزار ہزار مسافر لے کر جاتے ہیں. کہا کہ یہ جب اڑے گا تو یہ ظالم خود اللہ والا نہیں بلکہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ والا بنائے گا. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کی ٹینکی پہ فائر کرتا ہے, کہتا ہے یار تو جو تمہاری فرسٹ ایئر والی معشوقہ ہے نا, بہت دن سے تم نے اس کو آئس کریم نہیں کھلائی, ذرا دل میں خیالات تو پکاؤ, اس کو بھی کیسے تم دین سکھاؤ گے, تم خالی اکیلے تم اللہ والے بنو گے. پتا یہ چلا کہ تہجد بھی ہے, اشراق بھی ہے, بزرگوں کے پیر بھی دبا رہے, تبلیغ میں چلا بھی ہے, اجتماع پہ بھی آنسو سے رو رہے, حج عمرہ بھی ہے, اور بھابھی کے ساتھ ناشتہ ہو رہا ہے, اور پھر ناشتہ بھی ڈبل مکھن لگا رہے, پوچھ بھی رہے کہ بھابھی جان مکھن لگاؤں؟ جی ضرور لگائیے بھیا, سنگل لگاؤں یا ڈبل؟ وہ بھی آتا ہے ڈبل ہے استاد جانے دو. یہ عالم ہے, ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے. کی بیوی سے پردہ ہے, بیوی کی بہن سے پردہ ہے, ایک صاحب بالکل تازہ, انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں میری سالی آتی ہے, میری بیوی کی بہن, بس اس کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیالات آتے ہیں, اور دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کونے میں لے جا کر ٹی پلاؤں. یہ بھلے آدمی ہے, شکل دیکھے تو ماشاءاللہ, لیکن بات کیا, میں نے کہا آپ نے اتنے زمانے تک پردہ شروع نہیں کیا, اتنے زمانے سے ظالم دین سیکھتے ہو آ کر اور ابھی تک پردہ نہیں کرتے, جبکہ اس سے پردہ ہے سالی سے. یہ ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ دو, خود پہلے شکایت یہ کی, پہلے شکایت یہ کی کہ دو تین دن تو معاملہ ٹھیک چلتا ہے, پھر اس کے بعد وہی سب حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. پہلا سوال کیا کہ گھر میں پردہ ہے؟ جی پردہ تو نہیں ہے. جب پردہ نہیں ہے اب سالی سے آنکھیں ملائی جا رہی ہیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ جانا کتنے گھر ایسے ہیں کہ گھر اجڑ گئے, یہ ان بہنوں نے اپنی بہن کے گھر اجاڑا اور مبتلا ہوئے. نتیجہ یہ کہ اس نے کہا میری بہن کو طلاق دو, مجھ سے شادی کرو, اور یہ اوپر سے جو گھر میں ٹی وی رکھے ہوئے, کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تو سمجھ میں نہیں آتی تھی, علماء اللہ والے فرماتے تھے دیکھو یہ اخلاق خراب کرنے والی چیز ہے, مخرب اخلاق ہے یہ, اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا, اب تو بہین ہے, کھلا ہے آنکھوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اخلاق خراب ہو رہے ہیں, چوری ڈاکے سیکھ رہے ہیں. شادی شدہ ان کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ گھروں سے کیسے بھاگنا ہے. لہذا عالم یہ ہے اچھے اچھے گھرانے ان کی لڑکیاں شادی شدہ وہ گھروں سے بھاگ رہی ہیں. یہ کس کی کرامت ہے؟ یہ ٹی وی کی کرامت ہے. لڑکیاں عشق بازیاں لڑا رہی ہیں. پہلے زمانہ ہوتا تھا کہ کوئی مرد ہمت کر کے کسی لڑکی سے کہتا تھا, آج کل تو زمانہ الٹا آ گیا, اب تو لڑکیاں بھی آفر کر رہی ہیں. صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ یار جی تم کہتے ہو کہ آج کل لڑکیاں بھی آفر کر رہی ہیں, हमसे तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। क्या शुक्र अदा करो यार, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, जो कहे उसी पर ईमान ले आओ बस। वो टीवी देखकर लादा जा, एक जगह बयान हुआ अभी सफर में, मैंने कहा देखो हर आदमी चाहता है मियां बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाए। लादा जिस घर में टीवी होगा वहां मियां बीवी में मोहब्बत हो नहीं सकती। एक तो नहुसत है, जो तस्वीर है वो अपनी नहुसत है, लेकिन दूसरी नहुसत यह कि अब टीवी पर सजी सजाई लड़कियां आ रही हैं, कम उम्र मॉडल गर्ल्स स्टार, पहले इनका नाम रंडिया होता था, अब जमाना हो गया ना शोबिज स्टार, मॉडल गर्ल, फैशन गर्ल, जैसे पहले हजाम बोलते थे, नाई है हजाम है, अब कहते हैं हेयर ड्रेसर है, पहले धोबी होता था तो अब जनाब जो ड्राई क्लीनर बन गए, नाम बदल दिया, काम तो वही है, पहले वो दर्दी होता था अब वो जनाब टेलर मास्टर हो गए, काम वही है। तो जो पहले काम तवाइफा फाहिशा औरतें करती थी, अब उनका नाम मॉडल गर्ल लग गया, और यही काम एयर होस्टेस है ना महरम और कमीने किस्म के मर्द। दादा आप जहाजों में तमाशा देखे तो औरतें किस, उनका बस नहीं चलता कि टिकट देके इनको गोद में बिठा ले बस, हकीकत बात है ये, क्योंकि मेरा जहाजों पर सफर होता है, बस नहीं चलता कि टिकट का देकर समझते कि इनको भी ले लिया हमने, लिहाजा औरत गुजरेगी ऐसे बैठेंगे, एयर होस्टेस गुजरेगी ऐसे ताकि जरा कुछ टच हो जाए, टचिंग टचिंग सिस्टम बना रहे हैं, वो है ना एक क्रीम आती है उसका नाम है टच मी, ऐसे बैठेंगे। इसलिए मेरे मुर्शिद ने इस पर एक बात सुनाई, फरमाया कि एक ऐसे टुच्चा किस्म का था, वो ऐसे बैठा था 45 डिग्री 45 डिग्री इधर, अच्छा और फिर स्टाइल बहाने कैसे बनाते हैं, ऐसे बैठ ताकि समझे कि बड़े स्टाइलिश है ये। अब उसके बाद वो जब टकराई तो एयर होस्टेस भी, उसको भी गुस्सा आया, अब ऐसे मुफ्त में तो नहीं पड़ जाती ना वो भी, उसको गुस्सा आया, उसने एक दो दफा जब ऐसा हुआ और वो ऐसे बैठे हुए तो स्टाइल बना बनाकर, अब उसने जहाज के जो अफसर था उसको जाकर कहा कि देखो ऐसा बदमाश है, उन्होंने कहा चलो ऐसे बदमाशों का इलाज हमारे पास है, अब उसने एक गोली खिलाई, कहा ये गोली खाओ, और क्या किया वो सुनिए। अब उसके बाद वो आई, अब वो बैठा हुआ, अच्छा फिर अपनी बीवी से बात करेंगे तो ऐसे माथे पर तेवरियां, और अपनी बहन से बात करेंगे माथे पर तेवरियां, मां बाप से बात करेंगे ऐसे, और एयर होस्टेस से बात होगी ऐसे जैसे बस फिरा है, ऐसा आलम है। आप देखिए इधर अंग्रेजी नहीं आएगी लेकिन एक्सक्यूज भी सीख लेंगे बस, बाकी इससे ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल सकते, लेकिन एक्सक्यूज भी याद किया है, और वो भी जरा मुंह टेढ़ा करके ऐसे करके। ये तो सब तमाशा देखते रहते हैं, क्योंकि मैंने भी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा है और मुलाजमत वगैरह की है, अल्लाह ताला ने करम किया, मेरे शेख की सोहबत की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ाने की और दीन सिखाने की अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। अंग्रेजी दानों के तो पोल में जानता हूं कितनी अंग्रेजी आती है, सब्जी वाले पे जाके रोट डालते हैं पोटैटो दे दो, सब्जी वाला भी कहता है आया सही उल्लू कहीं का, वो भी इन्हीं को चूना लगाता है, अभी बार्गेनिंग तो कर नहीं सकते, भाव तो कम कराएंगे नहीं क्योंकि इनके पोटैटो में फर्क आएगा ना, ये तो हम जैसे ही लोग जाते हैं, ओ भैया आलू दे यार एक किलो कितने का 20 रुपया, तेरे बाप का है कम कर पैसे, हम ही लोग झगड़ा कर सकते हैं भाई पैसे कम कर, अब ये पोटैटो वाले तो नहीं करवा सकते ना कम, इनको 20 का माल 40 में देगा वो तो जो है। अब वो उसने जाकर किया, अब वो ऐसे बैठे हुए मुंतजिर है कि मेरी माशूका आ रही है। अब उस इसमें एक बात और बतानी थी, हमारे शेख के एक पीर भाई उनका इंतकाल हो गया, बड़े प्यारे आदमी थे। वो फरमाते थे कि ये जो एरोस्टस का तर्जुमा, ये फिदाई मासियां हैं, और इतनी यानी बेगैरती की इंतहा है कि गैर मर्दों से हसद के बातें करेंगे, लेकिन मजाल नहीं कि अपने घरों में वहां सब करेंगी काम, मुस्कुराकर कमीने किस्म के मर्दों के सामने मुस्कुरा मुस्कुराकर चीजें पेश करेंगी, लेकिन अपने शौहरों की खिदमत करते हुए, अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए, अपने भाइयों की खिदमत करते हुए इनको शर्म हया आती है। और कमीने किस्म के बेगैरत किस्म के लोगों के सामने वहां हंस हंस के बातें कर रही है। अब वो जो है एरोस्टस को दवा खिलाई, अब उस दवा खिलाने के नतीजे में उसके पेट में हुई गुड़गुड़ शुरू। अब वो सामने वाले पैसेंजर और मुसाफिर से बात कर रही है, और जो गुड़गुड़ों से निकलने वाला मकाम उस पैसेंजर की तरफ जो यूं बैठे हुए और खुश हो रहे हैं, क्या पॉइंट आया मेरे सामने। अब वो पेट में जो असर किया, एक गोला निकला, खुशबूदार गोला। अब वो जो उसकी नाक पर लगा, उसकी खुशबू का असर यह हुआ कि जो 45 डिग्री इधर बैठे हुए थे वो 90 डिग्री पे आ गए। उसके बाद वो वापस उधर गई, उसने कहा अभी तुझे मजा चखाती हूं मैं, फिर पलट कर आई, फिर उससे बात किया, फिर एक गोला छोड़ा। अब वो जो जनाब 90 डिग्री इधर थे, अब इस तरफ 45 डिग्री चले गए। उसने कहा अभी बात नहीं बनेगी, तुझे मोहल्ले तक पहुंचा के आऊंगी। जैसे बाजे लोग हैं ना, वो औरतों को कहते हैं पहली नजर माफ है, लगा यहां से देखना शुरू करेंगे, ये 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 घर तक पहुंचा के आएंगे बेगैरत कहेंगे। ये जी पहली नजर माफ है, झांके तक नहीं झपकाएंगे और बयान में सो रहे होंगे कि जी सुकून मिलता है। इसलिए तो जगाने के लिए ऐसे वाकया सुनाने पड़ते हैं। अब दो हो गए ना, दो बम मारे उसने, क्लस्टर बम। अब उसके बाद वो जनाब अब 45 डिग्री इधर बैठे हुए, पुरुष ने कहा अभी नहीं, अभी तुझे घर पहुंचा के आऊंगी। उसके बाद आए, तीसरा बम मारा उसने। अब जो वो साहब थे उससे कहते विंडो वाले को, खिड़की वाले से, भाई साहब अब आ गए अपनी असलियत पर, भाई साहब मेहरबानी करो जरा मुझे वो सीट दे दे, जरा मेरा दिल घबरा रहा है। उसने कहा अच्छा चल यार, वो वहां जाकर भागा। आ मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि तुम जो इन औरतों को देख रहे हो, इन लड़कों को देख रहे हो, क्या पाओगे तुम इनसे सिवाय पेशाब पखाने की गटर लाइनों के, क्या है इनके पास कि जिसको देखकर अपनी जवानी, अपना माल, अपना वक्त, अपनी जिंदगी और अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हो। मिलेगा कुछ भी नहीं। मान लो पा लिया ना, एक लौंडे को हासिल किया, पैसा दे दिया, मोबाइल दिला दिया, उसको बिरयानी खिला दी, क्या मिलेगा उससे बताओ भाई, सिवाय पखाने के मकाम के। क्या अल्लाह ताला ने इंसानियत का शरफ और ईमान का शरफ हमारी जानों को इसलिए अदा किया कि हम अपनी इंसानियत को और अपने ईमान को इन पखाने के मकामों पर फिदा करें और पेशाब के मकाम पर? सोचने का मकाम है मेरे दोस्तों, सोचना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को कहां बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जिक्र से, तिलावत से, नूर से, इज्तमा में शिरकत करने से, सोहबतों से, हजो अमरा करने से नूर पैदा होता है। उस नूर की हिफाजत करें, नजर बचाए, गुनाह से बचे, तो नतीजा क्या होगा? वो नूर इतना होगा। आ हजरत बड़े पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किन से? दीन का काम करने वालों से। फरमाए तुम अल्लाह वालों से अल्लाह ताला की मोहब्बत सीखो और अल्लाह ताला की मोहब्बत को बढ़ाने का तरीका सीखो, फिर उसके बाद इतनी अल्लाह का नूर हासिल करो कि तुम्हारा दिल जो है वो नूर से भर जाए, यहां तक कि नूर दिल से भी छलकने लगे। फिर छलकता हुआ माल मखलूक को दो, अपने मटके को खाली मत करो। क्या अजीब बात है, देखिए फरमाए अपने मटके को भरा रहने दो, खाली मत करो, छलकता हुआ माल मखलूक को दो अल्लाह के लिए। तुम फिर दीन की खिदमत करके देखो, फिर देखो लोग कैसे गौर से सुनते हैं। फिर तुम ये शेर पढ़ोगे कि जमाना बहुत गौर से सुन रहा था, जमाना बहुत गौर से सुन रहा था, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। फरमाया तुम अल्लाह के लिए पहले अल्लाह वालों से अल्लाह की मोहब्बत तो सीखो, वरना नतीजा क्या होगा? तुम दीन का काम करोगे लेकिन पीछे चंदा होगा, पीछे कुर्बानी की खाले होंगी, पीछे रसीद भूखे होंगे, मना नहीं है। कि ठीक है ये जायज काम है, लेकिन तुम्हारा हर चीज के पीछे कोई गैर अल्लाह का मकसद होगा, अल्लाह नहीं होगा पीछे। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया अपनी रूहानियत को तरक्की करने के लिए तीन काम, एक तो किसी अल्लाह वाले को अपने सर पर रखो, उससे मशवरा करो, दीनी तरक्की में आगे बढ़ो, अपने जाहिर और बातिन को अपने अखलाक को संवारने की फिक्र करो, और दूसरा काम ये कि जिक्र का इंतजाम करो, और तीसरा काम ये कि गुनाह से बचने में जान की बाजी लगाओ। हाँ मेरे मुर्शिद फरमाते हैं अगरचे राह तकवा में हजारों गम भी आते हैं, फरमाए कि मैं इससे इनकार नहीं करता कि गुनाह नजर बचाने में दिल को तकलीफ होती है, बेशक तकलीफ होती है, लेकिन मगर जो आशिक सादिक है गम को सहता रहता है। मान लो इससे तकलीफ है, अगर मैं दाढ़ी रखूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे अच्छा तू भी मुल्ला के चक्कर में आ गया ना, शलवार टकने से ऊपर करूंगा लोग मजाक उड़ाएंगे, हाँ आ गया ना मुल्ला के चक्कर में। क्या बेशक ये मखलूक को कहने को मिलेगा, लेकिन तुम जरा इस बात को सोचो कि कल कयामत के दिन मरने के बाद क्या चीज तुम्हारे काम आने वाली है। और मान लो कि ये तकलीफ है कि जब गुस्सा तुमको गुस्सा आएगा और गुस्से को बर्दाश्त करने में तकलीफ है, और दिल यही कहता है, नफ्स कहता है नहीं, गाली दो, मारो, कुटाई करो, लड़ो, लेकिन अब अखलाकी बुलंदी को कायम करने में तकलीफ है और लोग भी कहेंगे देखो हाँ ये बुजदिल था, कहने को बुजदिल कहलाएगा, फरमाया थोड़े दिन की तकलीफ होगी लेकिन उसके बाद पल्ला तुम्हारा ही भारी रहेगा। अखलाकी बुलंदी को कायम करो, अल्लाह ताला अपने करम से हमारी जानों को अपने कुर्ब अपने मोहब्बत का की अजीम दौलत अता फरमा दे और हम सबको अल्लाह वाला बना दे। तो हम ये तीन काम करें इंशाल्लाह जमीन पर रहते हुए हमारा जिस्म जमीन पर होगा। मेरे मुर्शिद फरमाते तुम्हारे हाथ मशगूल होंगे, तुम्हारी आंखें कम मशगूल होगी, तुम्हारे पांव मशगूल होंगे, लेकिन तुम्हारा दिल अल्लाह के साथ होगा। दुनिया के मशगलों में भी ये बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में भी ये बाखुदा रहे, ये सबके साथ रह के भी सबसे जुदा रहे। वाखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. يا الله تعالى اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا وہ درد عظیم عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض نہ کرے. اے کریم مالک ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مکانات کی حفاظت فرما، ہمارے کاروباروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری املاک کی حفاظت فرما، ہماری جائیدادوں کی حفاظت فرما، ہماری اولاد، ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجیے. اور اے کریم مالک اپنے کرم سے شیطان و نفس کے حملوں سے ہم سب کو بچا، اور اسی طرح سے یا اللہ جو لوگ ہمارے شہر کو ہمارے ملک کے امن کو اور چین کو اور سکون کو برباد کریں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اے کریم مالک اپنے یا اللہ تعالی اپنے جلال اور اپنی قہاریت کی تجلی ان پر نازل فرما، ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ جو مسلمان ہمارے علماء ہمارے مسلمان ہمارے ممالک اور ہماری جائیداد کو جو لوگ جو دشمنان دین دشمنان دین دشمنان ملت نقصان پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے عالم اسلام کو مسلمانوں کو دین خداموں کو اپنے کرم سے محفوظ فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ہم سب کو یا اللہ اللہ والا بنا دیجئے، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ جو اپنی بیٹیوں کے بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے، جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما، ہم کو بھی نیک بنا، ہماری اولاد گھر والوں کو بھی نیک بنا، ہمارے دوست احباب رشتے دار متعلقین اور سارے عالم کے مسلمانوں کو نیک بنا دیجئے. اور اے اللہ ہمارے دلوں میں جو غفلت ہے اس غفلت کے کینسر کو ہمارے دلوں سے پاک نکال کر ہمارے قلوب کو پاک فرما، اور اپنی محبت کاملہ ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، ان سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آدا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اپنے کرم سے ہمارے مل بیٹھنے کو